मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। कुमार दुष्यंत की लिखी पंक्तियां हमें कितनी ही संभावनाओं से भर देती है। वो कहते हैं ना कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, क्योंकि साहिल लुधियानवी ने भी कभी ये कहा था कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी के नजर से हम, सारा खेल बस नजरिए का है। तो क्यों ना आज की सुबह शुरुआत एक बेहतरीन नजरिए के साथ करें। आप जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे से और सुन रहे हैं मुझे यानी प्राची प्रिया को, और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा। सुप्रभात सायरा।
सुप्रभात प्राची, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड एंड द संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे। प्रॉब्ली यू आर नॉट रशिंग टू योर वर्क एंड हैविंग योर मॉर्निंग टी और कॉफी कंफर्टेबली इन योर बेड व्हाइल लिसनिंग टू आवर शो। एंड यस, एज प्राची स्टार्टेड द शो ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव नोट, ये सब कुछ हमारी नजर के ऊपर ही है कि हम आधा ग्लास खाली देखें या आधा भरा देखें। सो एवरीथिंग इज देयर इन आवर आईज एंड परसेप्शन, so why not have a beautiful perspective towards life to make your life and everyone else's life around us much easier. On that note, let's start today's show, Prachi. Let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 112th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast on the entire network of Akashvani and Doordarshan, AIR News website and News on AIR mobile app. It will also be live streamed on YouTube channels of AIR News, DD News, PMO and Information and Broadcasting Ministry. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। राजस्थान से पूर्व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और पूर्व केन्द्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम से पूर्व लोकसभा सांसद रोमन रामेन डेका को छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के कैलाश नाथन को पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस्पात सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा ने कहा है कि सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अधिक मांग के कारण भारत में इस्पात उत्पादन वर्ष 2030 तक 30 करोड़ टन से अधिक हो जाने का अनुमान है। कल दिल्ली में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर जोर दिए जाने से इस्पात की मांग काफी अधिक बनी हुई है और इसमें लगभग 10% वृद्धि की संभावना है। श्री सिन्हा ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर के कारण स्टील की मांग मजबूत बनी रहेगी।
Former US President and Republican Party's nominee for upcoming presidential elections, Donald Trump, has pledged to turn America into the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world if elected. Speaking at the Bitcoin 2024 conference in Nashville, former president also promised to appoint an advisory council to frame his administration's cryptocurrency policy. Trump also promised to fire Gary Gensler, the current head of the Securities and Exchange Commission, or SEC, which oversees the industry, and free a jailed American who ran the Silk Route market.
भारत ने कल पहले T20 मैच में श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
In the Women's Asia Cup T20 cricket, defending champions India will face host Sri Lanka in the final match of the tournament today. The match is scheduled to begin at 3 p.m. at the Rangiri Dambulla International Stadium. Harmanpreet Kaur-led Women in Blue will aim to lift the title for the 8th time. India has shown exceptional form throughout the tournament with both bat and ball. In Paris Olympics, shooter Manu Bhakar qualified for the women's 10-meter air rifle women's event finals yesterday after finishing third in the qualification. She will try to open India's account in medals tally as she will be action in women's 10-meter air rifle finals at Paris today. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. The Indian men's hockey team also kick-started their campaign with a 3-2 win against New Zealand in the opening Pool B match last night. In doubles, pair of Chirag Shetty and Sattvic Sairaj Ranki Reddy registered a comfortable win in their first group stage match, defeating French shuttlers Lucas Corvey and Warner Lebar. And now it's time for the Metro News. Let's start with the city of Chennai first, Prachi. The National Institute of Fashion Technology is incorporating AI into the curriculum to prepare students for fashion industry's future. According to Director Anita Manohar, a 20 crore rupees trend insights and forecasting lab has been established on campus. It is the first ever AI and emotional intelligence enabled fashion trend analysis and forecasting initiative, featuring a deep learning AI model and Indian taxonomy with more than 50 Indian products. NIFT and the State School Education Department are training selected government school students in fashion design, management and technology. Another news coming in from the city of Chennai. The Enforcement Directorate has provisionally attached immovable properties worth 298 crore rupees of South India Corporation Private Limited, a group company of Chettinad Group, in connection with the alleged 900 crore rupees scam in handling coal at Visakhapatnam port for the state-owned firm Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation. More than 300 acres of land in Cuddalore district owned by SICPL has been attached as proceeds of crime by the ED as part of the investigation. This is the second major seizure by ED in the case after the attachment of fixed deposits worth 360 crore rupees in the accounts of SICPL in April 2023. Moving on to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has announced the installation of a 250 meter sky deck near NICE Road in the outer periphery of Bengaluru on 25 acres of land as a tourist attraction. Addressing media persons in Bengaluru yesterday, D.K. Shivakumar also proposed tunnel roads to ease traffic in Bengaluru. He informed that the first such tunnel is planned from Esteem Mall near Hebbal to Silk Board, a distance of 18.5 kilometers. Another tunnel is planned from east to west. Another idea proposed by him to ease traffic movement was signal-free corridors at 17 to 18 places in the city. The minister said 12,000 crore rupees is needed to build a 100-kilometer-long signal-free corridor. There is also a plan to build double-decker flyovers adjacent to metro lines for vehicular movement. He said that another meeting will be called to discuss the conservation of lakes in Bengaluru city and solid waste management. And now moving to the city of Hyderabad, Telangana Chief Minister Erivanth Reddy has pledged to bring metro rail connectivity to the old city of Hyderabad within the next 4 years. Interfering during the discussion on the annual budget 2024-25 in the assembly last evening, the Chief Minister outlined the ambitious plans for the Hyderabad Metro Rail Phase 2 expansion. The state government has proposed a joint venture company in partnership with the centre to fund this expansion, which will cover a stretch of 78 kilometres. This initiative aims at benefiting a larger section of the city's population by enhancing connectivity. Another news coming in from Telangana. River Godavari is flowing at 53 feet above the third warning level at Bhadrachalam as the river receives heavy inflows due to rains at upper riparian areas. The revenue authorities have sounded the third danger signal as the river crossed 53 feet at the temple town last evening. The district collector, Jitesh V. Patil, said water level is gradually increasing due to incessant rains. Officials have been directed to move people from flood-affected areas to rehabilitation centres, and people have been requested to follow the advice and instructions of the district administration. So one has to be very careful in the city of Hyderabad, probably because of the rains. And that was the buzz that I had, Prachi, from the cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी बिल्कुल, बढ़ते हैं दिल्ली के प्रमुख समाचारों की तरफ। नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS कनेक्ट ऐप को अपडेट किया है। इस ऐप में यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग के साथ साथ कई अन्य नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इसके माध्यम से यात्री टिकट बुक करने के साथ ही पिछली यात्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में चल रहा लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है। 16 दिवसीय यह उत्सव केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्य योजना का हिस्सा है। ये मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सफलता की कहानियों के साथ साथ पूरे देश से शिल्प उत्पादों, कला और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को बढ़ावा देने की पहल है। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन इस महीने की 16 तारीख को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किया था और यह इस महीने के अंत तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक अब कुछ देर बाद नई दिल्ली में होगी। भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव और आम बजट पेश होने के बाद हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ASITA पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मां केसरी देवी के सम्मान में एक पौधा लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम का जीवन कठिन परिश्रम और संवेदनशीलता का अनूठा संयोजन था, जिसे देश को विशेषकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि डॉ कलाम ने अपने कार्यों से सबके दिल को जीता। श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम कहते थे कि कोई भी लक्ष्य साहस और कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है। गृहमंत्री ने कहा कि उनके विचार आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एल्गर परिषद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमाशेन, सोना विल्सन, सुधीर धावले, महेश राउत और सुरेंद्र गडलिंग ने याचिका दायर की थी। इन सभी को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काव भाषणों से संबंधित है, जिसके कारण अगले दिन पुणे जिले के कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी थी। महाराष्ट्र से एक और खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि बोसियार रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, लेकिन ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ने यह भी कहा कि पटरी से उतरने की घटना से लोकल ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के पश्चिमी रेलवे पर 27-28 जुलाई की मध्य रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 35 मिनट तक बोरीवली और भायंदर स्टेशनों के बीच एक बड़ा ब्लॉक रहेगा। ये ब्लॉक पटरियों, सिग्नल्स और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव के कामों को पूरा करने के लिए लागू किया जाएगा। और चलते हैं अब कोलकाता से आई हमारे पास जो खबर है उनकी तरफ। जुलाई के महीने में कोलकाता में डेंगू और मलेरिया के मामले में पिछले साल की तुलना में केसेस कम हैं। कोलकाता नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। मेयर और नगर निगम और शहरी मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि लोग काफी जागरूक हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जागरूकता नहीं आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और मीडिया भी डेंगू और मलेरिया के बारे में जागरूकता अभियान फैलाने में मदद कर रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम सायरा मौसम की तरफ भी। दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की पूर्ण संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है।
Well, Prachi, if we talk about the other cities, there's no difference in the weather conditions because obviously Sawan apne uruj pe hai, to zahir hai jab Sawan ki jhadi har taraf lagi hi hui hai, we can say. Chennai is expected to have partly cloudy sky, possibility of moderate rain or thunderstorm. Temperature in Chennai will hover between 28 and 36 degrees Celsius, while Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with light rain. In Bengaluru, the temperature will hover between 20 and 28 degrees Celsius, while Hyderabad will also have light rain or drizzle with a cloudy sky throughout the day, and temperature in Hyderabad will hover between 23 and 30 degrees Celsius. And well, Prachi, agar baat khel ki jaye, to sabse badi khabar to Paris Olympics ki hi hai, isn't it? The opening day of Paris Olympics was full of achievements for Indian athletes. In the 10-meter air rifle women's event, Manu Bhakar qualified for the finals after finishing third in the qualification. The Indian men's hockey team also kick-started their campaign with a 3-2 win against New Zealand in their opening Pool B match at the Manmohan Stadium last night. We have more from our correspondent.
The aftertaste of the pyrotechnics of a unique opening ceremony on the River Seine lingered as the 33rd Olympics got going in full swing at venues all across Paris and beyond yesterday. It was a busy day for Indian athletes as they took part in sports ranging from shooting to badminton. Incessant rain led to disruptions in outdoor venues and the gloom accompanied star Indian shooters in action at Châteauroux, more than 250 kilometers away from the French capital. However, even as the 10-meter air rifle mixed teams faltered, Manu Bhakar broke through the haze to become the first Indian woman shooter to qualify for an Olympic final in 20 years, as she cantered to third place in the 10-meter air pistol qualification event to remain in contention for an Olympic medal. In the men's 10-meter air pistol qualification, neither Sarabjot Singh nor Arjun Singh Thima made the final. The cheers continued to reverberate back in the City of Light as the hockey team made a winning start to their campaign, prevailing 3-2 in a seesaw battle against a gritty New Zealand side. On the badminton courts, top-billed men's duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, as well as singles dynamo Lakshya Sen, won their group matches, but the women's doubles pair of Tanisha Krasto and Ashwini Ponnappa suffered a loss in their opener. More victories came later in the day as young boxer P.T. Pawar outclassed her Vietnamese opponent to enter the pre-quarterfinals of the women's 54kg event. Meanwhile, experienced paddler Harmeet Desai reached the main draw of the men's singles event with a composed victory. Earlier in the day, rower Balraj Pawar finished fourth in his heat to enter the repechage round that will take place tomorrow. Away from the stadia, the India House was inaugurated in a glitzy ceremony in the presence of legendary athletes such as P.T. Usha and Abhinav Bindra, as well as FIFA President Gianni Infantino. The India House, a collaboration between the Indian Olympic Association and the non-profit Reliance Foundation, will showcase the country's culture over the next fortnight at Paris. Today, India will be gunning for their first medals of Paris 2024 in shooting and archery. Athletes from the nation will also be in action in sports ranging from badminton to table tennis, boxing to swimming. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani.
पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन निशानेबाज मनु भाकर भारत के लिए पदक तालिका में खाता खोलने की कोशिश करेंगी। वो आज शैटोरॉक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में फाइनल्स में उतरेंगी। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। महिलाओं और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में रमिता जिंदल, 11L वाला रिवान, संदीप सिंह और अर्जुन बाबूता आज दोपहर स्पर्धा करेंगे। भारतीय खिलाड़ी आज तीरंदाजी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी स्पर्धा करेंगे।
Well, all eyes towards Paris, and we hope that probably we'll get a lot of medals, of course, Prachi, so that we share the celebration with our listeners every day. And before we move on to seek what happened in the past on this day, let's tell our listeners that today is World Hepatitis Day, which is observed annually on this day, that is 28th of July, providing a crucial opportunity to enhance both national and international efforts to combat hepatitis. This day also aims to raise awareness about hepatitis, which is a group of infectious diseases known as hepatitis A, B, C, D and E, and its severe consequences for those affected by it. The observance commemorates the birth of Nobel Prize-winning scientist Dr. Baruch Samuel Blumberg. The theme of World Hepatitis Day 2024 is, It's Time for Action.
बिल्कुल, और क्योंकि जैसा सायरा आपने बताया कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस है, तो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने, रोकथाम तथा हेपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का एक समूह है जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये छूने से फैल जाता है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को ये रोग होने पर उसे बिल्कुल भी अलग रखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण जो फैल जाता है उसके लिए थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है।
यस, एंड वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल प्राची इन प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल व्हेन बेबीज आर बॉर्न। इफेक्टिव वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी। वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन। अदर सेफ प्रैक्टिसेज इंक्लूड ऑफ कोर्स यूजिंग सेफ इंजेक्शंस, यूजिंग न्यू एंड स्टेराइल नीडल्स फॉर इंजेक्शंस, ब्लड स्क्रीनिंग दैट इज टेस्टिंग द डोनेटेड ब्लड फॉर हेपेटाइटिस वायरसेस कैन बी हेल्पफुल, which reduces the risk of transmission through blood transfusions. Also safe sexual practices, because using protection reduces the risk of transmission through sexual contact and it prevents direct contact with infected bodily fluids. And hepatitis B immunoglobulin, it is given to infants that are born to hepatitis B infected mothers and individuals after exposure. It provides immediate short-term protection against hepatitis B. Prachi, today is also World Nature Conservation Day.
बिल्कुल, आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है और प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को ही ये दिवस मनाया जाता है। वर्तमान परिपेक्ष में कई वनस्पति की प्रजाति जंतु जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर एक संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हैं। भारत देश जंगल, वन्य जीव और जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में बड़े ही विचित्र तथा आकर्षक वन्य जीव यहां पाए जाते हैं। हमारे देश में भी वन्य जीवों की विभिन्न और विचित्र प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए जरूरत है कि हम उसे कंजर्व करके रखें, सुरक्षित रखें।
एब्सोल्युटली प्राची, एंड यू यूज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, जल, जंगल, जमीन, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ऑफकोर्स पेड़ तो लगाना जरूरी है, लेकिन जंगलों का संरक्षण That is very different from just planting trees on a patch of land.
आजकल क्या deforestation हो रहा है, उसके जगह afforestation की जरूरत है।
Absolutely, but it's very also important because the forest here imbibes everything. It's a natural habitat to innumerable species of flora and fauna. So that अगर आपने जंगल काट दिया और उसके बदले कहीं 100 पेड़ लगा दिए, it will never ever match what the forest do, as the lungs of the world, we can say. And there are many ways. Of course, planting trees cannot be undermined. Reducing, reuse and recycling, which is very important. आजकल प्राची देखते हैं हम लोग का वो जमाना ही चला गया कि जब हम लोग रीयूज करते थे या रिसाइकिल करते थे चीजें। अभी हम लोग के हैंड बैग्स खराब हुए, एक जिप भी खराब होती है तो हम लोग दूसरा हैंड बैग लेते हैं। बट आई रिमेम्बर,
बल्कि डिजाइनर हैंड बैग्स की तरफ जाते हैं अब तो।
यस, बट आई रिमेम्बर आवर मदर्स नेवर यूज टू डू दैट। अगर उनकी एक जिप खराब होती थी तो वो उस इंसान के पास जाती थी, भैया इस जिप को ठीक कर। एंड दे यूज टू री यूज दैट बैग अंटिल जब तक उसके चिथड़े ना हो जाए।
हालांकि इसके पीछे एक जो मंशा रहती थी वो बचत की रहती थी।
यस, बट
बजट की रहती थी।
एग्जैक्टली, बट आई मीन इट हैड वेरी नाइस, यू कैन सी रेपरकशंस इफ, बिकॉज वी यूज टू रिसाइकल एंड री यूज अ लॉट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसी से तो हमें कहीं ना कहीं वो सोच में, हमारी माओं की सोच में रही है।
यस, इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर वी से दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस तो हो रही है, बट बहुत उसके साइड बाय साइड वी कैन से कि बिहेवियर रिग्रेशन भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स, आप किसी भी जाइए, फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल होता है, कोई भंडारा लगाए, आप उसके बाद सड़क पे देखिए क्या हाल होता है विद ऑल दो डिस्पोजेबल्स. बट अर्ली आई रिमेम्बर, इफ यू विल ऑल्सो रिमेम्बर, इन आर चाइल्डहुड वो पत्तल यूज करते थे, तो वो अगर सड़क पे आते भी थे तो वो झाड़ू लग के किनारे, एंड जो गाय होती थी या कोई भी जानवर होते थे वो उसे एडेबल होते थे, वो खा जाते थे
और अगर नहीं भी खाते थे वो मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि वो पूरी तरीके से कम्पोज हो जाता था.
एब्सोल्यूटली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वेरी स्मार्ट एंड वाइज चॉइसेस. दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स कैन एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे इन कंजर्विंग आर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड यस प्लीज, एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था बहुत ही फेमस कंजर्वेशनिस्ट का, उन्होंने कहा कि डोंट से दैट यू हैव टू सेव अर्थ, क्योंकि अर्थ इज सो पावरफुल, नेचर इज सो पावरफुल, इट विल इवेंचुअली रिक्लेम एवरीथिंग, चाहे वो प्रलय से आ जाए, चाहे कुछ भी. यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ह्यूमंस विल पेरिश इन दैट प्रोसेस. सो अगर हम लोग ने बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई नेचर को, तो हम लोग तो पेरिश होंगे, बट नेचर विल इवेंचुअली रिक्लेम एवरीथिंग. सो येस, दैट इज ऑन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक बैक इन हिस्ट्री, वॉट मेक्स दिस डे स्पेशल, प्राची, इज on this day in 1914, World War I officially began when Austria-Hungary declared war on Serbia.
और आज के ही दिन वियतनाम आसियान का सदस्य बना.
On this day in 1945, the United States Senate ratified the UN Charter with an overwhelming majority vote of 89-2. UN Charter established the United Nations, an international organization dedicated to maintaining international peace and security, promoting cooperation among nations and addressing global challenges.
और आज के ही दिन सन 2005 में सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा हुआ था.
Also on this day 1989, Mufti Muhammad Saeed was disqualified from Rajya Sabha, and if you're wondering why he was disqualified, well, it was the first case of such a disqualification from the house under the anti-defection law. And now if you remember some of the personalities who either have their death, birth, anniversaries or their birthdays today, is fehrist mein sabse pehla naam hai Jagdish Raj Khurana ka, who has his death anniversary today. And agar aap log ko yaad hoga ki Shafi Inamdar ke baad jo sabse zyada typecast actor in the role of a policeman the, that was Jagdish Raj. And he actually played the role of a police inspector in 144 films. That is quite a staggering number.
बिल्कुल. और आज जगदीश राज खुराना की क्योंकि पुण्यतिथि है, और हम जानते हैं कि अभी आपने बताया भी सायरा कि भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे. जगदीश राज के नाम 144 अलग अलग फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का रिकॉर्ड है. सोचिए, उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. और उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर, ईमान धर्म, गोपी चंद जासू, सिलसिला और आईना आदि शामिल हैं.
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग कुमकुम टुडे ऑन हर डेथ एनिवर्सरी. कुमकुम, हु वॉज बॉर्न एज जेबो निसा खान, वॉज एन एक्ट्रेस ऑफ येस्टर ईयर्स. शी इज बेस्ट नोन फॉर हर रोल्स इन मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटू, शेख सपेरा, एक लुटेरा, गंगा की लहरें, राजा और रंक, आंखें, ललकार, गीत एंड एक कुंवारा एक कुंवारी. She paired with many film heroes of her era and was popular in roles alongside Kishore Kumar. Let's listen to one of her songs. Mera naam hai Chameli, main hu malan nalbeli, chali aayi main akeli Bikaner se. Utaro gaapa ko bolo, jara darwaja to kholo, khadi hu main darwaje pe badi.
और आज इंद्र कुमार अथवा इंदर कुमार की पुण्यतिथि भी है. भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से ये एक रहे हैं. उन्होंने 20 से भी अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. इंद्र कुमार ने सन 1996 में फिल्म मासूम से अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत की, वो फिर वो पलट कर नहीं देखा. उन्होंने तुमको ना भूल पाएंगे और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी सफल फिल्मों में काम किया. सुनिए उनकी फिल्म से एक गीत.
ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, तुम सा नहीं कोई प्रिया. तू खुश रहे जहां भी रहे.
Today we are also remembering Sukhen Das, an actor, director, screenwriter and story writer of Bengali cinema. And he has given a lot of unusual roles. In fact, his role as a child actor in Master Sukhan in the movie Dasi Putra was quite acclaimed. Let's listen to one song.
লেগে গেছি দাদা এনে গলা সাদা তারে গামা পাধা।
और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है। अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को यहीं समाप्त करने की और सुनते रहिए हमें 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।
हैव अ ग्रेट डे लिसनर्स। नमस्कार।